लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उपयाजकों की जयंती के अवसर पर पोप फ्रांसिस का उपदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। उपयाजकों की जयंती के अवसर पर रविवार 23 फरवरी को पोप फ्रांसिस के प्रतिनिधि कार्डिनल रिनो फिजिकेल्ला ने वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजा घर में समारोही क्रिस्त्याग अर्पित किया। पोप फ्रांसिस इस समय रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं। कार्डिनल रिनो फिजिकेल्ला ने पोप के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया, जो अस्पताल में डबल निमोनिया का इलाज करा रहे हैं। महाधर्मदक श्रीनो फिजिकेल्ला ने पोप फ्रांसिस के उपदेश को प्रस्तुत किया, जिसमें वे उपयाजकों को क्षमाशीलता के प्रेरित निस्वार्थ सेवक और समुदाय के निर्माता बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पोप फ्रांसिस के उपदेश को प्रस्तुत करते हुए कार्डिनल रिनो फिजिकेल्ला ने कहा,
Il messaggio delle letture che abbiamo ascoltato si potrebbe riassumere con una parola.
आज के पाठों के संदेश को एक शब्द में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, उपहार। यह निश्चय ही आप सभी के लिए जो जयंती समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्रित हैं, प्रिय शब्द है। इसलिए आइए हम सामान्य रूप से क्रिस्त जीवन के इस मूलभूत आयाम और विशेषकर आपकी प्रेरिताय के तीन विशिष्ट पहलुओं पर चिंतन करें, क्षमाशीलता, निस्वार्थ सेवा और सहभागिता। पहला, क्षमाशीलता। क्षमाशीलता की घोषणा करना आपकी प्रेरिताय का एक अनिवार्य हिस्सा है। वास्तव में क्षमाशीलता हर कलीसियाई बुलाहट का एक अनिवार्य तत्व है और हर मानवीय रिश्ते की आवश्यकता भी है। यीशु इसी आवश्यकता एवं महत्व की ओर इशारा करते हैं जब वे कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यह बिल्कुल सच है। अगर हमें एक साथ आगे बढ़ना है और एक दूसरे की ताकत एवं कमजोरियों, उपलब्धियों और असफलताओं को साझा करना है तो हमें क्षमा करना और माफी मांगना, रिश्तों को फिर से बनाना एवं उन लोगों को भी प्यार करना है जो हमें चोट पहुंचाते या धोखा देते हैं। एक ऐसी दुनिया जो अपने विरोधियों के प्रति घृणा के अलावा कुछ महसूस नहीं कर सकती, वह आशाहीन एवं भविष्यविहीन दुनिया है जो अंतहीन युद्ध, विभाजन और प्रतिशोध के लिए अभिशप्त है। दुख की बात है कि आज हम यही देख रहे हैं कई अलग अलग स्तरों पर और दुनिया के सभी हिस्सों में। क्षमा का मतलब है हमारे और हमारे समुदायों के लिए एक स्वागत योग्य और सुरक्षित भविष्य तैयार करना। उपयाजक जिन्हें व्यक्तिगत रूप से एक मिशन सौंपा गया है और जिसे वे दुनिया के सुदूर क्षेत्रों तक ले जाते हैं, वे एक घायल बहन या भाई के रूप में देखने और दूसरों को भी दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो हमारे साथ गलत करते या हमें पीड़ा देते। इसलिए दूसरी चीजों की तुलना में मेल मिलाप, मार्गदर्शन और मदद की सबसे अधिक आवश्यकता है। आज का पहला पाठ हृदय के इसी खुलेपन की बात करता है जो हमें साउल अपने राजा के साथ साथ अपने उत्पीड़क के प्रति दाऊद के निष्ठावान और निस्वार्थ प्रेम को प्रस्तुत करता है। हम इसे फिर से उपयाजक स्टीफन की प्रेरणादायक मृत्यु में देखते हैं, जो उन लोगों को क्षमा कर देते जो उन्हें पत्थरों से मार रहे थे। सबसे बढ़कर हम इसे यीशु में पाते हैं जो सभी उपयाजकों के आदर्श हैं, जो क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन देने हेतु खुद को खाली कर दिए और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उन्हें क्रूस पर चढ़ाते हैं। वे भले डाकू के लिए स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। दूसरा, निस्वार्थ सेवा। प्रभु ने इसे सुसमाचार में सरल और स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया है। भलाई करो और उद्धार दो, बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद मत करो। यह एक ऐसा वाक्य है जो छोटा है, फिर भी दोस्ती की खूबसूरती को दर्शाता है। इसमें हमारे प्रति ईश्वर की मित्रता, किंतु हमारी अपनी मित्रता भी है। आपके लिए एक उपयाजक के रूप में निस्वार्थ सेवा आपकी गतिविधि का एक गौण पहलू नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का एक अनिवार्य आयाम है। वास्तव में अपनी प्रेरिताय के माध्यम से आप पिता के दयालु चेहरे के मूर्तिकार एवं चित्रकार होने के लिए खुद को समर्पित करते हैं और त्रित्व में ईश्वर के रहस्य के साक्षी हैं। सुसमाचार पाठों में येसु अपने बारे इसी आलोक में बात करते हैं। वे ऊपरी कक्ष में फिलिप को यही बात कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और फिर जब वे पौत्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं तो वे कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच एक सेवक के रूप में हूँ। इससे पहले यरूशलेम के रास्ते में जब उनके शिष्य आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो उन्होंने समझाया था कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों की मुक्ति के लिए अपने प्राण देने आया है। प्यारे डीकन भाइयों, जो मुक्त कार्य आप ख्रिस्त के प्रेम के प्रति अपने समर्पण की अभिव्यक्ति के रूप में करते हैं, वह ईश्वर के वचन की आपकी प्राथमिक घोषणा बन जाता है, जो आपके सामने आने वालों के लिए आत्मविश्वास और खुशी का स्रोत है। जितना संभव हो उसे मुस्कुराते हुए, बिना शिकायत के करें और बिना पहचान की चाह के करें। एक दूसरे का समर्थन करें। धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के साथ अपने संबंधों में भी एक कलीसिया के रूप में उनकी प्रेरिताय के सभी स्तरों की सराहना करते हुए स्वर्ग राज्य की सेवा में प्रतिबद्ध रहें। आपके सहयोग और उदारता के माध्यम से आप वेदी को सड़क से और यूखरिस्त को लोगों के दैनिक जीवन से जोड़ने वाले पुल बनेंगे। उदारता आपकी सबसे सुंदर प्रार्थना होगी और मिस्सा बलिदान आपकी सबसे विनम्र सेवा। तीसरा बिंदु है सहभागिता। देना और बदले में कुछ भी अपेक्षा न करना एकजुटता लाता है। यह संबंध बनाता है क्योंकि यह एक ऐसी एकजुटता को व्यक्त करता और पोषित करता है जिसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता बल्कि स्वयं का और दूसरों का भला करना है। आपके संरक्षक संत लॉरेंस को जब उन पर आरोप लगाने वालों ने उनसे कलीसिया के खजाने को सौंपने के लिए कहा, तो उन्होंने उन्हें गरीबों को दिखलाया और कहा, ये हमारे खजाने हैं। इस तरह समुदाय का निर्माण किया जाता है। अपने भाइयों और बहनों को अपने शब्दों बल्कि सबसे बढ़कर अपने कार्यों से, व्यक्तिगत रूप से और एक समुदाय के रूप में यह बताकर कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी यात्रा और हमारे जीवन का हिस्सा बने। पोप कहते हैं, आप यही करना चाहते हैं। आप में से जो स्थायी उपयाजक हैं, वे पति, पिता और दादा के रूप में ऐसा करते हैं, जो अपनी सेवा द्वारा अपने परिवारों का विस्तार करते और उन सभी जगहों पर जरूरतमंदों को शामिल करते हैं जहां आप रहते हैं। संत पापा ने कहा, प्रिय उपयाजको, आपका मिशन आपको समाज से अलग करता है ताकि आप उसमें गहराई से जुड़ सकें। यह सभी के लिए और अधिक खुला एवं स्वागत करने वाला स्थान बन सके। यह सिनोडल कलीसिया की सबसे बेहतरीन अभिव्यक्तियों में से एक है जो आगे बढ़ती है। नए उपयाजकों को संबोधित करते हुए संत पापा कहते हैं, आप में से कुछ लोग जल्द ही डीकन अभिषेक का संस्कार प्राप्त करेंगे और प्रेरिताय को अपनाएंगे। तब कहें, मैं जानबूझकर इसमें उतरता हूँ न कि चढ़ता हूँ, क्योंकि अभिषिक्त होना चढ़ना नहीं बल्कि उतरना है, जिससे हम खुद को छोटा बनाते हैं, हम खुद को दीन बनाते और खुद का त्याग करते हैं। संत पौलुस के शब्दों में, सेवा के माध्यम से हम सांसारिक मनुष्य को पीछे छोड़ देते और उदारता में स्वर्ग के मनुष्य को धारण करते हैं। आइए हम सब चिंतन करें, हम क्या करने वाले हैं। हम अपने आप को कुमारी मरियम को सपोर्ट करें जो प्रभु की दासी हैं, और संत लॉरेंस को समर्पित करें जो आपके संरक्षक हैं। वे हमारी प्रेरिताय की हर अभिव्यक्ति को नम्र और प्रेमपूर्ण हृदय से अनुभव करने में मदद करें, और उदारता में क्षमा के प्रेरित हमारे भाइयों और बहनों के निस्वार्थ सेवक और समुदाय के निर्माता बनाएं।
Apostoli di perdono, servitori disinteressati dei fratelli e costruttori di comunione.
ईश्वर पे विश्वास जो
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा सोमवार सुबह प्रकाशित एक बयान के अनुसार संत पापा फ्रांसिस ने अस्पताल में 10वीं रात अच्छी तरह से बिताई। बयान में कहा गया है कि रात अच्छी गुजरी, संत पापा सो पाए और अब आराम कर रहे हैं। संत पापा रोम के जेमेली अस्पताल में डबल निमोनिया के लिए इलाज करवा रहे हैं। रविवार शाम को वाटिकन के प्रेस कार्यालय ने कहा कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, हालांकि शनिवार सुबह से उन्हें कोई श्वसन संकट नहीं हुआ है। संत पापा फ्रांसिस को उनके हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए रक्त आधान किया गया था। रविवार को प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया स्थिर बना हुआ है, हालांकि कुछ रक्त परीक्षणों में शुरुआती हल्के गुर्दे की कमी दिखाई देती है, जो वर्तमान में नियंत्रण में है। साथ ही कहा गया कि नाक नलिकाओं के माध्यम से उच्च प्रवाह ऑक्सीजन थेरेपी जारी है। इससे पहले रविवार को संत पापा ने जमेली अस्पताल में अपने अपार्टमेंट में डॉक्टरों और नर्सों के साथ पवित्र मिसा में भाग लिया, जो उनके उपचार की देखभाल कर रहे हैं। रविवार ये देवदूत प्रार्थना के संबोधन में, जिसे संत पापा फ्रांसिस ने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान वाटिकन प्रेस कार्यालय को इसे जारी करने के लिए कहा था, यूक्रेन में युद्ध के तीसरे सालगिरह को याद किया। इसे पूरी मानवता के लिए दर्दनाक और शर्मनाक अवसर कहा और वे पीड़ित यूक्रेनियों एवं सशस्त्र संघर्षों के सभी पीड़ितों के साथ अपने एकजुटता को नवीनीकृत किया। आज 24 फरवरी यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध की तीसरी वर्षगांठ है। पूरी मानवता के लिए दर्दनाक और शर्मनाक अवसर, संत पापा फ्रांसिस ने देवदूत प्रार्थना के संबोधन के दौरान यह व्यक्त किया, जिसे उन्होंने यूक्रेन में पूरी तरह से रूसी आक्रमण के 3 साल की सालगिरह के एक दिन पहले रविवार को प्रकाशित करने का फैसला किया। संत पापा 14 फरवरी से रोम के जमेली अस्पताल में डबल निमोनिया का इलाज करा रहे हैं। संत पापा ने शहीद यूक्रेन के लिए प्रार्थना और एकजुटता को नवीनीकृत करते हुए लिखा, जैसा कि मैं शहीद यूक्रेनी लोगों के साथ अपनी एकजुटता को नवीनीकृत करता हूं, मैं आपको सभी सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों को याद करने और फिलिस्तीन, इजराइल और पूरे मध्य पूर्व, म्यांमार, कीवू और सूडान में शांति के उपहार के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। संत पापा ने उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, इन दिनों में मुझे स्नेह के कई संदेश मिले हैं। मैं विशेष रूप से बच्चों के पत्रों और चित्रों से प्रभावित हुआ हूँ। इस निकटता के लिए और दुनिया भर से मुझे मिली सांत्वना देने वाली प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। मैं सभी को माता मरियम की मध्यस्थता में सौंपता हूँ और आपसे अपने लिए प्रार्थना की मांग करता हूँ। और दुनिया के हर कोने से संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए समर्थन और प्रार्थनाओं के संदेश आ रहे हैं। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि संत पापा के स्वास्थ्य के लिए आज शाम से रोम में रहने वाले कार्डिनल रोमन कुरिया और रोम धर्म प्रांत के सभी सहयोगियों के साथ ईश्वर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए पवित्र रोजरी माला का पाठ के लिए रात 9 बजे संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित होंगे। आज की प्रार्थना की अध्यक्षता वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन करेंगे। उधर यूक्रेन में रूसी आक्रमण के 3 वर्षों में लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं और शहर बर्बाद हो गए हैं। यूरोप से शांति के प्रवर्तक के रूप में अपनी भूमिका को पुनः खोजने का आह्वान किया गया है। 3 साल पहले 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और यूरोप के हृदय में युद्ध लौट आया। ये 3 वर्ष बहुत कठिन रहे हैं, जिनमें मृत्यु, भय और पीड़ा ने लाखों लोगों के दिलों पर अपना प्रभाव डाला है। सैन्य एवं नागरिक हताहतों की कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के समाचार पत्र लगभग 7 मिलियन लोगों के पलायन की रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें अपना सब कुछ छोड़कर उन पड़ोसी देशों की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया या अन्य सुरक्षित गंतव्यों के लिए पारगमन मार्ग की पेशकश की। देश के अंदर इन महीनों में 0 से 20 डिग्री नीचे तक पहुंचने वाली सर्दी में लगभग 4 मिलियन विस्थापित लोग हिंसा से बचने के लिए आश्रय की तलाश कर रहे हैं। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे जो अक्सर हमले वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में बमों या ड्रोन हमलों से बचने के लिए सुरंगों में रहते हैं। कई शहर अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। बिजली की अक्सर कमी है, साथ ही गर्मी, भोजन या चिकित्सा देखभाल की संभावनाएं भी समाप्त हो गई हैं। संत पापा ने कल देवदूत प्रार्थना के लिए जारी संदेश में इस वर्षगांठ को समस्त मानवता के लिए दर्दनाक और शर्मनाक बताया और हर परिस्थिति में जोरदार तरीके से दोहराते रहे कि युद्ध हमेशा एक हार है और अथक रूप से न्यायपूर्ण और स्थायी शांति और संवाद की आवश्यकता का आह्वान किया, क्योंकि न्यायपूर्ण शांति, समता, पारस्परिक सम्मान और समय के साथ स्थिरता के सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही बातचीत का रास्ता सभी की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, इसलिए यह केवल बमों और टैंकों को रोकने का मामला नहीं है, बल्कि की गई गलतियों को पहचानने, एक कदम पीछे हटने का साहस रखने, दूसरे का चेहरा देखने, एक ऐसी प्रणाली का निर्माण और समर्थन करने का मामला है जो सभी पक्षों के लिए अधिकार, सुरक्षा और कल्याण की गारंटी देता है। सभी प्रकार की हिंसा को शांत करना, विश्वास का पुनर्निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को पुनः आरंभ करना अत्यावश्यक है। जैसा कि कुछ महीने पहले वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने परिकल्पना की थी, जहां हेलसिंकी की भावना के रूप में परिभाषित की गई बात को पुनः शुरू किया जाएगा, क्योंकि 1975 में यह वास्तव में एक साथ एक मेज पर बैठने की इच्छा ही थी, जिसने शीत युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया और तनाव को कम किया। इसलिए यूरोप से अपील है कि वह स्वयं को पुनः खोजे, अपने संस्थापकों की जड़ों की ओर लौटे और शांति, स्वागत एवं सार्वभौमिक भाईचारे के उदाहरण का सच्चा सबूत और विश्वसनीय अभिनेता बनने में सक्षम बने। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।